नमस्कार दोस्तों, कुछ अंतराल के बाद हम फिर से इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप हमसे जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह भारत में क्रिप्टो का हिसाब किताब। और चूंकि आप जानते हैं कि क्रिप्टो इतना कुछ है, इसमें इतनी सारी बातें हैं कि थोड़े समय में सब पे बात नहीं की जा सकती है, तो और ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम कोशिश करेंगे कि दो चार पांच पॉडकास्ट में बातें करते रहेंगे। और चूंकि क्रिप्टो चलता रहेगा और चीज़ें चलती रहेंगी, तो मुद्दे आते रहेंगे और विषय मिलते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे। आज हम इस पर बात करते हैं कि अभी हमारे देश में क्या स्थिति है और हम क्रिप्टो का अभी जो पूरा माहौल है वो कहाँ और किस दिशा में जा रहा है। आप जानते हैं कि जैसे बाकी दुनिया में क्रिप्टो को लेके संशय है, शंकाएं हैं, भ्रम हैं, वो हमारे देश में भी हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ये भी है कि हमारे देश में अभी थोड़ा थोड़ा लोग लगा रहे हैं, मतलब थोड़ा डर के, थोड़ा संकोच में, क्या होगा नहीं होगा। बहरहाल संख्या बढ़ रही है। एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जेमिनी, जेमिनी का एक सर्वे है, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। यह सर्वे नवंबर 2021 और फरवरी 2022 के बीच में कराया गया था। इसमें पहली बार ऐसा पाया गया कि जो जिन लोगों ने पहली बार क्रिप्टो खरीदा है, पहली बार इन्वेस्ट किया है, उसमें भारतीय जो हैं वो पहले पायदान पे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। पिछले साल जो इन लोगों ने सर्वे कराया था उसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो खरीदने वाले अमेरिकी थे, फिर लैटिन अमेरिका के लोग थे, फिर तीसरे नंबर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र से थे। इस बार भारत के लोग जो हैं पहले पायदान पर आए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी अंडरलाइन किया गया है कि ज़्यादातर लोग जो अभी खरीद रहे हैं उसका एक हिस्सा जो है वो ये समझता है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से बचने में क्रिप्टो मददगार हो सकता है। जैसे कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज के रूप में सोना खरीदने की रवायत रही है, अभी भी है। तो कुछ लोग अब मानने लगे हैं कि शायद क्रिप्टो जो है वो भी एक इस तरीके का एसेट हो सकता है जो हमें इन्फ्लेशन के असर से बचा सके। हर 5 अमेरिकियों में से 2 लोगों ने और हर 5 भारतीयों में से 2 लोगों ने यही कारण उन्होंने बताया कि मुद्रास्फीति के असर से बचाव का यह एक जरिया है, जरिया हो सकता है। और आप जानते हैं कि लगातार पैंडेमिक के टाइम से ही पूरी दुनिया में, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, अब तो चीन में भी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ऐतिहासिक लेवल पे पहुंचा हुआ है। अभी आपने मार्च के आंकड़े देखे होंगे कि लगातार जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वो जो है 6 से ऊपर लगातार 3 महीने से, और मार्च में तो वो 6.95 तक पहुंच गया। और जानकार कह रहे हैं कि अभी भारत में कम से कम ये स्थिति सितंबर तक रह सकती है, उससे आगे भी रह सकती है लेकिन सितंबर तक रह सकती है कम से कम। बहरहाल जेमिनी के कुछ और आंकड़े हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसके सर्वे में शामिल लगभग 46% भारतीयों ने पहली बार 2021 में क्रिप्टो खरीदा, और जो लोग इस साल यानी 2022 में खरीदना चाह रहे हैं उनमें से 22% लोगों की उम्र जो है वो 18 से 24 साल के बीच है, और उसमें 17% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 से 54 साल के बीच है। ये जो आंकड़ा है 22% जो 18 से 24 साल के और 17% जो 45 से 54 साल के हैं, ये आंकड़ा 2021 में 17% और 14% था। यानी 17% ऐसे लोग क्रिप्टो की खरीद करना चाह रहे थे पिछले साल जो 18 से 24 साल के थे, और 45 से 54 साल के 14% लोग थे। तो आप एक रुझान देख सकते हैं कि युवाओं में पिछले बार भी और इस बार भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है बना हुआ है, बढ़ रहा है। कम से कम 59% ऐसे इंडियन हैं जो क्रिप्टो को पैसे के भविष्य के रूप में देखते हैं, फ्यूचर ऑफ मनी। इन आंकड़ों से एक तो हमें समझ में बात आती है कि क्रिप्टो को लेके आकर्षण बढ़ा है। आप में से जो लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे होंगे जो न्यूज़ पढ़ते होंगे, अरे बढ़ रहा है, घट रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो लोग बात कर रहे हैं, एटलीस्ट एक इंटरेस्ट बढ़ा। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के और देशों में भी, और बहुत सारे जगहों पे जो है क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है, बिटकॉइन और बाकी चीज़ों का। तो हमारे देश में भी ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट जगा है। लेकिन ये जो सर्वे है उसको जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये भी हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 20 देशों के 30,000 लोगों का ही सर्वे हुआ है, और जिसमें भारतीयों की संख्या जो है वो 1706 ही है। तो थोड़ा सा हमें जो सर्वे का आमतौर पर होता है सैंपल साइज वगैरह, तो थोड़ा ये भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा तो मिलता है। पिछले साल एक ब्रोकर डिस्कवरी फर्म है, ब्रोकर चूज़र, उसके हवाले से उसने बताया था कि भारत में जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या 10.07 करोड़ है। तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लगाया हुआ है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसने बहुत मामूली रकम डाली हुई है। और अगर आप इस 10 करोड़ प्लस की संख्या को भी देखें तो इस हिसाब से भी हम दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो के इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन अगर हम आबादी के अनुपात में इस बात को देखेंगे तो भारत 5वें नंबर पर है। पहले और दूसरे पायदान पे जो है यूक्रेन और रूस हैं, तीसरे नंबर पे कीनिया है, और चौथे नंबर पे अमेरिका है। बहरहाल क्रिप्टो का जो पूरा हिसाब किताब है उसके लिए और इस विषय को चूज करने के पीछे भी मेरा ये जो मैंने इस विषय पर बात करना चाहा, उसका कारण ये है कि ये जो महीना है अप्रैल का, वह क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ होने जा रहा है। ये महीना है अप्रैल 2022। आप जानते हैं बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि 30% जो भी मुनाफा होगा उस पर 30% लगेगा, TDS के बारे में बात हुई, वो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, हो गया मतलब। तो एक तो चीज़ जो कि अभी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ IMF के साथ बात करते हुए उनके एक डिस्कशन में भाग लेते हुए वित्त मंत्री ने, निर्मला जी ने भी कहा कि हमने इसको वैध नहीं किया है, लेकिन जो टैक्सेशन है वो उस दिशा में है एक कदम। लेकिन फिर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन वगैरह अभी चल रहा है, कोई सरकार की तरफ से भी, रिजर्व बैंक की तरफ से भी जिस तरीके के बयान आते हैं, या कुछ नहीं हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, तो वो बना हुआ है। लेकिन टैक्सेशन से ये एक चीज़ जरूर हुआ है कि ये मान लिया गया है कि भाई ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ है, ये चीज़ एक एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक हिसाब किताब हो रहा है, कुछ लेन देन हो रही है। तो इस महीने वो कराधान की जो नई व्यवस्था है वो लागू हो गई। अब जो खबरें आई इस टैक्सेशन के लागू होने के बाद कि अप्रैल के पहले 3 दिनों में जो देश में क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनके कारोबार में 15-55% की कमी हुई, और अप्रैल का, अब हम लोग 20-22 तारीख को बात कर रहे हैं, तो कुछ अखबारों की खबरें मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा कि उनमें बताया गया है कि ये जो बिजनेस में कमी आई है वॉल्यूम में वह 50-70% भी हो सकती है। इसमें एक बड़ी चीज़ ये हुई है कि इसी महीने बैंकों ने UPI से क्रिप्टो के लेन देन को क्लोज किया है, तो वो एक एक्सचेंजों को झटका लगा है, क्योंकि एक्सचेंज कुछ कुछ एक्सचेंज जो थे वो यूपीआई से अपने आप को कनेक्शन करके और उसको मतलब एक सेलिंग पॉइंट के रूप में प्लेस पेश कर रहे थे। और आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे देश में लोग जो हैं वो यूपीआई पे से जुड़े हुए हैं, डिपेंडेंट हैं। तो एक झटका ये भी लगा है। अब लेकिन चूंकि आप देखेंगे कि अभी 20 तारीख को ही $42,000 के आंकड़े पर पहुंचा बिटकॉइन, और आम तौर पे जो है वो ग्रीन जोन में ही चल रहा है मोटा मोटी, तो मुझे लगता है कि ये जो अभी कारोबार ढीला पड़ा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा लोगों में टैक्सेशन को लेकर भी थोड़ी समझदारी बने कि क्या है नहीं है। बीच में यहाँ तक कहने लगा कि भाई नुकसान होगा उस पर भी लगेगा और सारे पैसे पे लगेगा और तमाम चीज़ें। बहरहाल तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ इसमें कुछ सुधार होगा। अब इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ और खबरें हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि वजीर एक्स जो क्रिप्टो का देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और कुछ साल पहले इसको बिनांस ने एक्वायर किया जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसके दो संस्थापक जो हैं वो परिवार समेत दुबई शिफ्ट कर गए हैं, मतलब अब वहाँ रहेंगे। हालांकि कंपनी के तीसरे फाउंडर रही हैं और कंपनी यहीं से काम कर रही है, और कंपनी की तरफ से कहा भी गया है कि उनके यहाँ लोग वर्क फ्रॉम होम या किसी भी लोकेशन से काम कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो लोग ट्रैवल कर लेते हैं हेडक्वार्टर उनका मुंबई में और बेंगलोर में है। और कंपनी ने ये भी बताया कि उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो 70 अलग अलग जगहों से काम कर रहे हैं। तो ये कोई उस तरीके से घबराने या मतलब कोई बहुत वो नहीं है। 2018 में दो एक्सचेंज थे, जेप पे और वर्ल्ड, वो लोग सिंगापुर चले गए। कुछ एक्सचेंज सिंगापुर में ही रजिस्टर्ड हैं जो यहाँ काम करते हैं, कुछ बहुत पहले दुबई और अमेरिका जा चुके हैं। वजीरेक्स के जो दो संस्थापक हैं ये भी ब्लॉकचेन जो जिस टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है, ये क्रिप्टो वगैरह सब कुछ, और वेब 3 की बातें हो रही हैं, उसके से जुड़ी नई परियोजनाओं पर काम शुरू कर चुके हैं। अब मामला ये है कि इसमें जो चीज़ थोड़ी सी मतलब कंसर्न की है वो यह है कि कराधान प्रणाली तो लागू हो गई, टैक्सेशन लागू हो गया, लेकिन नियमन में जो है वो कोई क्लियरिटी उस तरीके से नहीं है सरकार की तरफ से भी, और डिफरेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, रिजर्व बैंक है या बैंक्स हैं, तो उसकी वजह से जो क्रिप्टो का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो पूरा क्रिप्टो से जो भी उद्यमी जुड़े हुए हैं या इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं या जो टेक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनमें एक कन्फ्यूजन है, उनमें एक मतलब हुआ है कि क्या होगा नहीं होगा, एक अनिश्चितता मैं देख रहा हूँ। कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात से आ रहा है क्योंकि ये फ्यूचर में की चीज़ है तो इसको आना ही है, अब वो चाहे जैसे आएगा, लेकिन वो किस तरीके से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है। और बीच बीच में आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं सरकार की तरफ से भी, रिजर्व बैंक की तरफ से, कि और थोड़ा सा मामला उलझता जाता है। अब इससे क्या हो रहा है कि ये स्टार्टअप जो हैं वो कहीं और बेस शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमारा नुकसान हो रहा है। जो हमारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंजीनियर हैं, जो कोडर हैं, जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो जो है वो दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कई सारे देश हैं जैसे अमेरिका, दुबई, सिंगापुर, मॉरिशस, कैमन आइलैंड, यहाँ इन लोगों ने वहाँ कुछ कुछ अपना बना लिया है नियम कानून और तमाम चीज़ें, तो लोग वहाँ जा रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि, और बहुत लिखा पढ़ा भी जा रहा है, थैंकफुली लोग उस पर चर्चा है कर रहे हैं, कि ये जो ब्रेन ड्रेन है, प्रतिभा पलायन है, इससे हमारे देश में क्रिप्टो को लेके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके, वेब 3 को लेके जो डेवलपमेंट हो सकता है उस पे निश्चित रूप से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अभी एक खबर मैंने देखी, उसमें बताया गया है कि मार्च के महीने में दुबई में कुछ वेब थ्री से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हुए थे, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग या बातचीत या कुछ कुछ ये हुआ था। तो उसमें जो है 75% जो पार्टिसिपेंट थे वो भारतीय थे। अब ये तो चलिए थोड़ा सा नेगेटिव वाला मामला हुआ, अब हम कुछ पॉजिटिव पे भी देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो चलती है वेब थ्री, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, उसके लिए हमारे देश में अच्छी खासी संख्या में नौकरियां निकल रही हैं और अच्छी सैलरी, जो कोडर हैं, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास अच्छे अनुभव हैं, वो उनके लिए अच्छी सैलरी भी ऑफर की जा रही है। एक फर्म है जो यही सब स्पेशलाइज्ड जॉब्स का से जुड़ी हुई है, उसका नाम है एक्सफेनो। उसने एक रिपोर्ट में बताया कि फरवरी में भारत में क्रिप्टो से संबंधित, ब्लॉकचेन से संबंधित 13,000 नौकरियां निकाली गई थी, जो इस तरीके के बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जॉब्स थे जिनके लिए ऑफर किया गया था, उसमें 4.5% हिस्सा जो था वो ब्लॉकचेन क्रिप्टो से रिलेटेड था, ये जो 13,000 की संख्या है। और चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स भी आ रहे हैं। लेकिन ये भी है, जैसा हमने पहले बात किया कि जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो है, तो वैसे में अब ये जो रोजगार वाला फील्ड में जो पॉजिटिविटी देख रहे हैं हम लोग, वो कितने समय तक रह सकेगी, ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात होगी। अब देखिए, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, टोकन, एक टोकन होता है, इन लोगों ये जो भी ये ब्लॉकचेन और इस पे काम करते हैं वो टोकन होता है। तो टोकन शुरू करने के लिए एक तरीके का आपके एक डिजिटल, क्या उसको कैसे कहें, डिजिटल मनी आप कह सकते हैं, या एक वैल्यू है उसका, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। अब क्या होता है कि जब भी वेब थ्री प्रोजेक्ट्स होता है तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो आपस में उनका जो एक्सचेंज होता है वो टोकन के थ्रू होता है, नंबर वन। नंबर टू कि उन्हीं के आधार पे जो ब्लॉकचेन परियोजनाएं होती हैं वो टोकन बनाती हैं, उनके टोकन के इम्पोर्टेंस, वैल्यू, इन्हीं सबसे उस प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन होता है कि वो प्रोजेक्ट कितना कितने पैसे का है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है और क्या नहीं है। और बिना टोकन के वेब थ्री परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो इस बारे में अब नियम ही नहीं है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि जो हमारे देश में भी और बाहर में भी जो स्टार्टअप कंपनियां हैं जो वेब थ्री वगैरह से जुड़ी हुई हैं, उनको इन्वेस्टर मिल रहे हैं, उसमें पैसा लगाया जा रहा है। तो पैसा लगाने वाले तो तभी लगा रहे होंगे ना जब उनको लग रहा होगा कि फ्यूचर जो है इसका कुछ है। तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल आज की बातचीत में हमने इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करने की कोशिश की, आगे हम इस पे 2-4-5 एपिसोड्स में कुछ और बातें करेंगे। और साथ में मैं भी ध्यान दिला दूं कि इन्वेस्ट करने का एडवाइस देने का काम मेरा नहीं है, वो एक्सपर्टाइज भी मेरे पास नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। हम सब समझदार हैं, हम सब थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, और अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि बाकी चीज़ों में हम समझदारी दिखाते हैं, हम इसमें भी इन्वेस्ट करते समय समझदारी दिखाएंगे। तो मित्रों, आज हम बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।